संयुग का एक अर्थ है कि हमारा उसके साथ संयोग होगा, हम कृष्ण से भेंट करना है। भेंट करना भी दो तरह से होता है, अभी कभी कभी कहता है ना प्रेम में कि मैं उसे भेंट करना चाहता हूँ, और कभी कभी कहता है मैं उसको देखना चाहता हूँ, उसे भेंट करना चाहता हूँ। तो ये रुक्मी इस मूड में बोला, कृष्ण के साथ जरा मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। और संजू का अर्थ वैसे युद्ध होता है, और यह कह करके वो सारथी को तो प्रेरित किया और कहा, अद्या हम निशितैवाण गोपाल सुदूर मते है नेशे वीर मदम जे न स्वसा में प्रसभम हृता। आज मैं अद्य अहम, आज या अभी अभी मैं निशित ही बाण रही, तीक्ष्ण बाणों से जिनमें जंग आदि नहीं लगा है, बिल्कुल तीक्ष्ण बाण है, देख रहे हो बाण दिखा करके सारथी से कह रहा है, अपने तीक्ष्ण बाणों से सुदूरमती गोपाल का वीर्य मद नष्ट कर दूंगा। गोपाल गाय चराने वाले का यह साहस कि राजकुमारी का अपहरण करके ले जाए, हद हो गया। गोपाल पर गोपाल से सुदूर मत है, यहाँ गोपाल का अर्थ करते हुए श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, गोपाल से वेद पाल कश्य वास्तव अर्थ। गो का अर्थ वेद की ऋचाएं भी होता है, भगवान वेद का पालन करते हैं, गौओं का पालन करते हैं, पृथ्वी का पालन करते हैं, इंद्रियों को सुख देते हैं, इसलिए उनको गोपाल कहते हैं। तो वास्तविक अर्थ यह है, सरस्वती जी जीव पर बैठी हैं रुक्मी के, कि श्री कृष्ण वेद के पालक हैं, ये सरस्वती जी अर्थ कर रही हैं, और सुदूरमती है। सुदूरमती का अर्थ है, सु का अर्थ है शोभना, अनुग्रहवती, दुष्टेशु अपि मतिर जस्य तस्य इति। सुदूरमते सु का अर्थ शोभना अर्थात अनुग्रह करने वाली, और दूरमते का अर्थ दूषित लोगों पर भी कृपा करने वाली जिनकी मति है, बुद्धि है, वे हैं सुदूरमती। दुष्टेशु अपि अनुग्रहवती बुद्धिर जस्य तस्य। सरस्वती जी कभी भी भगवान की निंदा नहीं कर सकती हैं। ये समझना चाहिए, मनुष्य या देवता या कोई भी प्राणी बोलता है तो उसको ये पता नहीं होता है प्रायः कि हमारे वाणी का नियामक कोई देवता है। वास्तव में सरस्वती जी वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, वही बोलती हैं। अतः यदि कोई व्यक्ति भगवान की निंदा करता है तो सरस्वती जी उसके शब्दों के दो अर्थ करती चलती हैं। एक अर्थ से तो वो समझता है कि मैं गाली दे रहा हूँ, लेकिन सरस्वती जी उस अर्थ एक दूसरे अर्थ द्वारा भगवान की कीर्ति गाती हैं, प्रशंसा करती हैं, इसको सारस्वत अर्थ कहते हैं। श्रीमद् भागवत के कई प्रसंगों में यह दिखाया गया है। तो यहाँ पर रुक्मी कह रहा है कि मैं आज तीखे तीखे बाणों से सुदुर्बुद्धि गोपाल का वीर्य मद नष्ट कर दूंगा, नेश्य वीर्य मदम नेश्य जेन स्वसा में प्रसभन होता। जिस व्यक्ति ने मेरी बहन का बलात् अपहरण किया है बिना परमिशन बिना राय के, जो प्रसभम प्रसभम का अर्थ बलात्, अतः मैं उसका वीर्य मद दूर करूंगा। नेश्य अद्य अहम निशितर वाणी गोपाल से सुदूर मदम नेस्से वीर्य मदम जेन स्वसा में प्रसभम हृता। यह निश्चय का अर्थ है कि मैं लाऊंगा, और यह मैं वीर्य मदम नेस्य सरस्वती अर्थ है मैं अपने वीर्य मद को नेस्य खत्म कर दूंगा। किससे टकरा करके? गोपाल से, सुदूरमती से, जिसने मेरे बहन का बलात् अपहरण किया है, उसके द्वारा मैं अपने वीर्य मद को नष्ट कर दूंगा आज। ये सारस्वत अर्थ लेकिन यह अपने समय से ऐसा कह रहा है कि अरे गाय चराने वाला और दूषित मती कृष्ण का वीर्ज मद आदमी नष्ट कर दू। वीर्ज मद का अर्थ होता है वीरता का मद, उसे अभिमान है कि वो बहुत बड़ा वीर है तो आज मैं दिखा दूंगा। ये रथ पर बड़बड़ा रहा था, पहले राजाओं की सभा में जो प्रतिज्ञा किया वो तो किया ही, रथ चलने लगा तो सारथी से इस तरह कृष्ण की निंदा करते हुए चल रहा था कि आज मैं उसको बता दूंगा। तब श्री वसुदेव गोस्वामी उसको गाली देना चालू करते हैं। तो वो कृष्ण को गाली दे रहा है तो सुखदेव जी कथा कहते समय कहते हैं, विकथमानः कुमतिः ईश्वरस्य प्रमाणवित् रथैनैकेन गोविन्दं तिष्ठ तिष्ठ अथावयत्। इस तरह वह कुमति कुत्सित बुद्धि वाला रुक्मी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी अपनी ओर से उसकी विशेषता बता रहे हैं। वो तो अपने को विद्वान समझ रहा है लेकिन श्री सुखदेव जी कथा कहते समय कमेंट देते हैं, कुमति कुत्सिता मतिर जस स कुमति, बहुत दूषित मति थी, चेतना बहुत दूषित थी। ईश्वरस्य अप्रमाणवित, वह भगवान के महत्ता को वैभव को ऐश्वर्य को नहीं जानता था बिल्कुल, इसलिए तो गोपाल कह रहा था ऐसा कह रहा था। भगवान की भगवत्ता को महत्ता को मूर्ख नहीं जानता था। तो एक ही रथ से सेना जो एक औसणी थी उसके तो पीछे आने वाली थी आ रही होगी, लेकिन ये तो अकेले एक रथ लेकर के और गोविंद के पास पहुंच गया और थोड़े दूर से ही लगा कहने, तिष्ठ तिष्ठ रुको रुको, तिष्ठ तिष्ठ रुको रुको, क्यों भाग रहे हो, इस तरह से बार बार बोल रहा था, तिष्ठ तिष्ठ इति अथ आहोयत, इस तरह से चैलेंज कर रहा था, चुनौती दे रहा था, रुको रुको रुको। धनुर्विकीर्ष्य सुदृढ़ जघने कृष्णम त्रिभीषरही आह चात्र क्षणम तिष्ठ जदूनाम कुलपांसनः। अपने सुदृढ़ धनुष को, बहुत मजबूत धनुष था, उस पर वो बाण चढ़ाया, तीन बाण, और कृष्ण पर मारा और मारते हुए क्या कहा, बस क्षण भर टिक जाओ, अरे जदुओं के कुल का नाशक कुल दूसर, जदुवंश में जन्म लिए तुम जदुवंश की कीर्ति समाप्त कर दिए, ऐसा ना लायक जदुवंश में ऐसा कोई किया हो कि किसी लड़की का विवाह दूसरी जगह होने वाला है और उसको लेकर के भागा हो, ऐसा काम कोई जादव आज तक नहीं किया है, और तुम नीचे जदुवंश पर धूल डाल दिए, पांसु का अर्थ होता है धूल या कलंक, धब्बा लगा दिया जदुवंश में, और सरस्वत अर्थ इसका है जदूनम कुलपांसन, जदूनम कुलप जादवों के कुल का पालन करने वाले भगवान है, जदुपति है, और अंशन अंश समाघात, अंश का अर्थ होता है घात करना, और स्वयं शत्रुओं का वध करने में कृष्ण बहुत चतुर है अंशन। तो इस सरस्वती जी अर्थ करते हैं कि हे जादव पते और हे शत्रुओं का हनन करने में चतुर, पर रुक्मी दूसरा समझ रहा है कि जदुवंश में जन्म लेकर के जदुवंश पर कलंक डाल दिया, सब लोग कहेंगे कि कृष्ण जैसा इस तरह से परिस्त्री का अपहरण करने वाला व्यक्ति जदुवंश में जन्म लिया, छी छी पहले के कितने अच्छे जदुवंशी हैं और तुम जन्म लिए। इस तरह से भगवान को बोल रहा था, और आह चात्र क्षणम तिष्ठ, बस थोड़े देर रुक जाओ, इसी में मैं बता दूंगा, और जदुवंश में जो तुम कलंक जन्म लिए हो तो जदुवंश का कलंक आज ही खत्म कर देता हूं, बस ठहर जाओ इतना ही काफी। वस्तुतः तो जदुनाम कुलस्य पते हे अंशन स्वयं च रिपु हनन चतुर, कुत्र जासी स्वसारं मे मुषित्वा ध्वंसवद हरिः, हरिष्यद्य मदं मन्द मायिनः कुत योधिनः। मैं स्वसारं मुषित्वा कुत्र जासि, मेरी स्वसारं मेरे बहन का अपहरण करके कुत्र जासि, कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जा पाओगे, मैं अभी हूं ना, तुम द्वारका नहीं जमराज के लोक में जाओगे, कुत्र जासि कहाँ जा रहे हो। मैं स्वसारं मुसित्वा मेरे बहन को चुरा कर भांग स्वधावि, जैसे कौआ यज्ञ मंडप में रखे हुए घी को या हवि को खा जाए, उस तरह से तुम रुक्मिणी को लेकर जा रहे हो, तुम हो इसके योग्य, यह राजकुमारी है, कितने सुंदर है तुम काला, इस तरह से कृष्ण कृष्ण बार बार कह रहा है, तो उसका ये भाव नहीं है कि पर ब्रह्म है, कृषिर्भूवाचक शब्द अणच निर्वृत्तिवाचक तयवरक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यादि धीयते, उसका यह भाव नहीं था कृष्ण कहने का कि पर ब्रह्म है भगवान है, कृष्ण ने काला इस तरह से, और मेरी बहन कितनी सोने जैसी गोरी है और उसको लेकर के जा रहा है। दृष्टांत क्या दे रहा है, जैसे यज्ञ मंडप में रखे हुए हवि को खीर आदि को डालने के लिए रखा गया है और उसको कोई कौआ ले जाए, कौए कभी कभी आते हैं यज्ञ मंडप और खा करके भाग जाते हैं। ध्वंस, ध्वंस का अर्थ होता है एक आंख वाला, ये कौआ को एक ही आंख होता है, गोलक दो होते हैं, सर्किट दो होता है, तो एक ही आंख से वो कभी इधर देखा करता है, इसलिए यहाँ सारस्वत अर्थ ये है, इसमें मुसित्वा अध्वंसवत, सरस्वती जी अर्थ करें अध्वंसवत, तो इंद्र का एक नाम है अध्वंस, क्योंकि उनको एक आंख नहीं, उनको सहस्र आंख है, शरीर में सब जगह आंख ही आंख है, तो अर्थ यह है कि तुम उस तरह से रुक्मिणी का हरण किए हो जिस तरह से इंद्र स्वाभाविक ही हवि के अधिकारी है, यज्ञ में जो हवन किया जाता है इंद्र को दिया जाता है इंद्राय स्वाहा, तो इंद्र भगवान ग्रहण करते हैं हवि को, तो इस तरह से तुमने मेरी बहन को ग्रहण किया है, और अमुषित्वा ये शब्द में अमुषित्वा, तुम्हें रुक्मिणी का हरण नहीं किए हो बल्कि स्वाभाविक ही तुम्हारे ही जो रुक्मिणी है, रुक्मिणी ने तुमको आत्मसमर्पण किया है इसलिए स्वाभाविक ले जा रहे हो, ये सरस्वती जी अर्थ करती है। लेकिन वह कह रहा है तुम मेरे बहन को चुरा करके वैसे ही ले जा रहे हो जैसे कौआ यज्ञ के हवि को नैवेद्य को खा गया, तो हरिष्य अद्य मदम मंदम माइना कुटियोधिना, तुम माई हो, माई का अर्थ होता है माया वाला, हमेशा तुम कपट करते हो, जो माया जानता है उसको माई कहते हैं, माई, तो इसका अर्थ है हे सदा अचिंत योग शक्ति से युक्त, सरस्वती जी अर्थ करती अचिंत योग माया से युक्त माई, और कुट योधिना का अर्थ है सिर्फ जीव गोस्वामी जी करते हैं, हम जैसे कुटिल लोगों को युद्ध में प्रेरित करने वाला, भगवान श्री कृष्ण ऐसा करते हैं, कोई व्यक्ति उनके साथ युद्ध करने आता है तो उस तरह से उसका उत्साह बढ़ाते हैं कि वो समझे कि कृष्ण अब हार जाएगा अब हार जाएगा, जैसे युद्ध छोड़ करके भागे कालजवन के डर से, तो केवल एक दो हाथ दूर रखते थे उसको, हाँफते थे कभी गिरते थे, तो वो सोचता था कि अब पकड़ा, तो पूरा कई योजन कई किलोमीटर तक माइल तक ले गए, अगर वो बहुत तेज भाग गए होते तो निराश हो गया होता कि अब नहीं पकड़ में आएगा, लेकिन भगवान ऐसे कुछ योद्धा हैं, ऐसे कुत्सित लोगों को युद्ध में प्रेरित करते हैं ये नाटक करके, तो इसका ये अर्थ है सारस्वत अर्थ, और कुट योद्धी का अर्थ है कि कपट से युद्ध करने वाला, रुक्मी के कहने का अर्थ है कपटी कहीं के, द्वारका से आए तो पता ही नहीं चला, अतिथि बनकर आए थे हमारे पिताजी के, स्वागत ले रहे थे अपने भाई के साथ, और हम लोग क्या जानते थे कि तुम इस घाट में हो और रुक्मिणी गिरजा गृह से आ रही थी तो बस लेकर के चल दी, यही है कार्य। तो शुरू में ही क्यों नहीं युद्ध में खड़े हो गए? उसे कहने का आशय ये था, तुम हमेशा कपट करते हो, तो आज मैं तुम्हारा मद हर लूंगा। अरे मंद, मंद का है या अर्थ है, हे स्थिर। भगवान डटे हुए थे, भाग नहीं रहे थे, तो सरस्वती जी अर्थ करती हैं हे मंद, अतः हे तेज गति से भागने वाले नहीं, मंद होता है स्थिर डटे हुए। और ये तो मंद का अर्थ ही समझ रहे कम बुद्धि वाला है। अरे मंद, अरे कम बुद्धि वाला, तुमको ये पता नहीं था कि तुम कितने बड़े व्यक्ति को छेड़ रहे हो? बहन का अपहरण करने के कारण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, ये तुमको बुद्धि नहीं थी, तुम ये गेस नहीं कर सके कि भविष्य में खतरा आ जाएगा। उसके कहने का भाव ये था, तुम इतना मंदमति हो, इतना भी नहीं देख सकते फ्यूचर की इस काम का क्या परिणाम होगा, अभी मैं तुम्हारा मद हर लूंगा। और वस्तुतः मैं शब्द यहाँ लगे, मैं मदन हरिष्य, मैं अपना मद मद आज हर लूंगा, खत्म हो जाएगा मेरा मद, सरस्वती जी अर्थ करते। तो भगवान तो रुके हुए थे और यह पहुंच गया, तब कहता है लास्ट में, जावन्न में हतो बाणे सही था मुंच दारी काम, तुम मेरे बाणों से पृथ्वी पर गिरने से पहले इस बच्ची को छोड़ दो, यदि नहीं छोड़े तब तो मेरे बाणों से तुम भूमिष्ठ हो ही जाओगे, ये सो जाओगे सदा के लिए, फिर उठ नहीं पाओगे। तो इसलिए कह रहे जावन नमे हतो बाणे, जब तक मेरे बाणों से तुम मारे नहीं जाते हो और माँ सहित जब तक सो नहीं जाते हो पृथ्वी पर, उसके पहले ही दारिका मुंच, दारिका को बच्ची को कहते हैं, 15-16 साल की बच्ची है तो दारिका है, तो इसको छोड़ दो, बड़ा भाई है और सबसे छोटी बहन है तो बिल्कुल बच्ची जैसी ही है इसके सामने, तो दारिका को बच्ची को छोड़ दो, अन्यथा मेरे बाणों से तुम सो जाओगे। सो जाओगे मतलब बेहोश हो जाओगे, मार दूंगा, मर जाओगे, पृथ्वी पर पड़ जाओगे, इसके पहले छोड़ दो। तो सरस्वती जी तो अर्थ पहले से ही कर रहे हैं कि जावन न में हतो बाणे, मैं बाणे न हत न सही था, तुम मेरे बाणों से आहत नहीं हो पाओगे, पृथ्वी पर नहीं गिर पाओगे, और इसलिए दारिका को मत छोड़ो, इसलिए बच्ची को मत छोड़ो। सरस्वती जी बोल रही, तो जब रुक्मी की बात भगवान सुने तो ये मुस्कुराने लगे, इस तरह से बोल रहा था, यह भी भगवान की महान महिमा है, इतनी गलत बात बोल रहा था, भगवान कितने महान हैं, कितने गुण हैं उनमें, लेकिन उनकी किस तरह से निंदा कर रहा था, फिर भी भगवान हंस रहे थे। अरे उनके चरण कमल का भजन करने वाले संत लोग किसी के वचन वाण से आहत नहीं होते हैं तो भगवान कैसे आहत हो जाए? भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति में कितना गुण आ जाता है कि निंदा स्तुति को सब समझता है, तो उन्हीं प्रभु को इसके वचनों से दुख लग जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? समय में हंस रहे थे, इतनी बड़ी निंदा की जा रही है और हंस रहे हैं। स्मयन कृष्ण धनुष छित्वा सद्भिर विद्याद रुक्मिणा, तो तीन बाण मार करके और इस तरह से गरज कर जब मारने जा रहा था तो उस समय कहा था कि बस बच्ची को छोड़ दो अन्यथा बस सो जाओगे पृथ्वी पर, इतना कहकर बाण मारा, तो भगवान हंस रहे थे, हंस करके उन्होंने उसके धनुष को काट दिया और उस पर 6 बाण मारा, ठीक डबल बाण भगवान ने मारा। वो तीन बाण भगवान पर मारा तो जिस धनुष पर वो बाण चला रहा था उस धनुष को ही भगवान ने काट दिया और 6 बाण मार, धनुष को तो काटा वो अलग से, धनुष को काट करके और 6 बाण मारा रुक्मी पर। और इसके साथ ही अष्ट भी चतुरो बाहान द्वाभ्याम सूतम ध्वजम त्रिभी, आठ बाण मारे भगवान चार घोर घोड़ों पर, दो दो बाण एक एक घोड़ा पर मारे एक ही साथ, छह बाण रुक्मी पर, आठ बाण मारे चार घोड़ों पर, दो बाण मारे सूत पर सारथी पर, और झंडा पर जो रथ पर था उस पर तीन बाण मारे। इसका मतलब ये सब कट कुट करके सब खत्म। स्वचान्य धनुराधाय कृष्णम विव्याध पंच भी, धनुष कट गया था रुक्मी का तो वह दूसरा धनुष लेकर के कृष्ण पर पांच बाण मारा। तेईस ताड़िता सरोघस्तु चिच्छेद धनुरक्षित, बहुत बाण मारा पांच बाण और भी बाण, लेकिन भगवान तुरंत ही उसके उस धनुष को काट दिए बाणों से। चिच्छेद धनुरक्षित, बहुत बाण चला करके भगवान ने धनुष को फिर काट दिया जो दूसरा धनुष लिया था। पुनरन्यत उपादत्त तदप्यक्षनदव्यय, तो फिर तीसरी बार दूसरा धनुष लिया, उसको भी लेते ही भगवान ने काट दिया हाथ में, बाण नहीं चला पाया। अब जो धनुष लेता था उसको भगवान काट देते थे। देखिए भगवान अभी केवल प्रतिकार कर रहे हैं, उसको मार नहीं रहे हैं। वो भगवान को मारने की चेष्टा कर रहा था तो भगवान उसकी चेष्टाओं को विफल कर रहे थे। कई बार धनुष लिया, धनुष लेते ही भगवान काट देते, हाथ में लिया अभी बाण चढ़ाने जाता था तब तक कई टुकड़ा डाल देते थे, बाण लग जाता था भगवान। तो पुनः अन्य उपादत्त, उपादत्त का अर्थ है कि लिया, तत् अपि अछिनद अव्यय, भगवान का नाम अव्यय है और अच्युत, एक ही श्लोक में दोनों नाम आए, अच्युत अव्यय अविनाशी भगवान तुरंत ही उसके धनुष को काट। अब धनुष उसके रथ पर नहीं रह गया, घोड़ा तो मर ही गए थे, झंडा कट गया था और रथ तो ठप हो गया था वहीं पर बैठा था, लेकिन रथ पर धनुष पहले से रखा होगा दस बीस से दो चार, तो जो जो धनुष लिया भगवान ने कट दिया। जब धनुष कट गया तो इसके बाद परिघ लिया, परिघ का अर्थ होता है लोहे का मूसल, लोहे का बना हुआ मूसल लिया भगवान पर मारने का। तो ज्यों ही उठा रहा था त्यों ही परिघ को भगवान ने काट दिया, ये हाथ में ले रहा था तब ही परिघ भी कई खंडित कर दिया। पट्टीसम, पट्टीस का अर्थ होता है गणासा, पट्टी जैसा उसकी धार होती है, तो उसको लेते ही काटा। सूलम, इसके बाद वो त्रिशूल लिया मारने के लिए, तो उसको भी भगवान ने काट दिया। चर्म, ढाल लिया था उसको भी काटा, असी तलवार को भी काटा, फिर शक्ति उठाया हाथ से चलाने वाला उसको भी काटा, और तोमर, तोमर तोमर गदा जैसा होता है, थोड़ा लंबा होता है, गदा तो गोलाकार होती है लेकिन तोमर आगे चल करके मोटा होता है, मुसल जैसा होता है, उसको भी काटा। जग जदा धमादत्त तत्सर्वम सोचिन धरी, जो जो आयुध ग्रहण करता था उसको भगवान काट देते थे। तो भगवान मानो ऐसा दिखा रहे हैं, भाई मैं बचना चाहता हूँ, ये जो हमको मारने के लिए जो जो आयुध ले रहा है, तो भगवान केवल आयुध काट रहे थे, उसको नहीं मार रहे थे। चाहते तो उस पर भी एक बाण चलाकर खत्म कर सकते थे, चाहे चक्र चला देते, लेकिन भगवान यह नहीं कर रहे थे, केवल प्रतिकार कर रहे थे। तो जद जद आयुधम आदत्ते तत् सर्वम सोपि छिन्न धरि, सो छिन्न अच्छिन्न धरि। श्रीहरि जो स्मरण मात्र से भक्तों का दुख दूर कर देते हैं, तो जो जो आयुध धारण कर रहा था उस आयुध को भगवान तत्काल काट देते थे। ततो रथादव अप्लुत्य खड़ग पाणी जिघांसया कृष्णम अभ्यद्रवत क्रुद्ध पतंग युव पावकम, अंत में उसके पास कुछ भी आयुध नहीं रह गया, केवल एक तलवार भर रह गया, वो स्पेयर तलवार था जहां से रखा होगा, वीर लोग ऐसे लेकर के चलते, तो तो खड़ग लेकर के और रथ से कूद गया, रथ से कूद करके और बहुत वेग के साथ भगवान के पास चला। भगवान भी रथ पर थे, जा करके और ऐसा भाव किया, इस इरादा से गया, जिघान से गया कि इसका वध कर ही दूं अब, और क्रोधित हो गया। जो जो आयु उठा रहा था भगवान उसको काटते रहे थे, तो क्रोध हो गया और कृष्ण का वध करने की इच्छा से खड़ग पानी, अपने पानी में हाथ में खड़ग लिया और कृष्णम अभ्यद्रवत, कृष्ण के पास दौड़ करके गया। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे गया जैसे प्रचंड अग्नि को समाप्त करने के कोई करने के लिए कोई फतिंगा कूद रहा हो आग में। ये देखिए उदाहरण दे रहे हैं, कोई फतिंगा छोटा सा विशाल अग्नि में जा करके अग्नि के दाहकता को बंद कर देगा क्या, कि वही खत्म हो जाएगा। तो रुक्मी इस तरह से भगवान को मारने चला उनके पास, जैसे पावकम पतंग, जैसे कोई पतंग फतिंगा धधकती हुई आग में कूदने जा रहा। अब तक रहता भगवान से दूर रहता तो जीवित रहता। इस तरह से महान शक्तिशाली भगवान को छेड़ना ठीक नहीं था उसके। ठीक सातवें स्कंध में ऐसा ही वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, जब हिरण्यकश्यपु भगवान को मारने के लिए चला तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो ऐसा लग रहा था जैसे एक फतिंगा आग में कूदने जा रहा हो, अथवा एक विकराल सर्प गरुड़ जी को मारने जा रहा। वो क्या मार पाएगा, गरुड़ जी के सामने सांप कुछ भी नहीं। तो भगवान अनंत शक्ति से युक्त हैं, रुक्मी उनके लिए क्या है। अगर भगवान प्रचंड अग्नि पुंज हैं तो रुक्मी एक फतिंगे के समान है, और उनके पास जाना कि जल करके मर जाएगा। इस तरह से वह कृष्ण को मारने के लिए गया। ततो रथादव प्लुत्य खडग पाणिर्जिघांसया कृष्णमभ्यद्रवत् क्रुद्ध पतंग इव पावकम्। तो जब भगवान के पास चला उनका वध करने के लिए, तो भगवान ने क्या किया, तस्य च पततः खड्गम् तिलसश्चर्म चेषुभि छित्त्वा सीमा ददे तिग्मम् रुक्मिणम् हन्तु मा ददे। भगवान ने देखा कि रुक्मी हाथ में खड़ग लिए बड़े वेग से मेरे तरफ आ रहा है, तो भगवान ने तुरंत ही बहुत से बाण मार करके उसके तलवार के तिल तिल कर दिए। मतलब टुकड़ा किए तो तिल तिल बराबर किए, तिल कितना छोटा छोटा होता, तिल सह धूली कर दिए एकदम। पहले तो एकाध टुकड़ा करते थे अस्त्रों का, इस बार तलवार के तिलसह चिच्छे बार तिलसह काट के बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म टुकड़ों में काट दिए, और चर्म को भी काट दिए। चर्म मतलब ढाल लेकर के आ रहा था, ढाल कृष्ण के आघात से बचने के लिए और कृष्ण को मारने के लिए, तो चर्म को भी अर्थात ढाल को भी तिलसह काट दिए भगवान, और तलवार को भी छित्वा काट दिए, और स्वयं असीम आददे तिग्मम, और स्वयं तलवार लिए भगवान। अब वे भी बाण से युद्ध नहीं करना चाहते थे, वे लिए और वो रथ से उतर गए भगवान, क्योंकि वो रथ पर नहीं है तो उसके साथ रथ पर चढ़ करके युद्ध करना उचित नहीं था। भगवान धर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, तो वो भी नीचे उतर गए और तलवार लिए, पहले से ही लेकर के चले थे द्वारका से। तिग्मम, तो तिग्मम श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं तीक्ष्ण भयावह, यह रुक्मी का भी विशेषण है और अथवा तलवार का भी विशेषण है। तिग्मम खड्गम असीम अथवा तिग्मम रुक्मिणम, वो रुक्मी कम खतरनाक व्यक्ति नहीं था, वो तिग्म था, बहुत भयावह। तो उसको हंतु माददे, भगवान ने उसका वध करने के लिए हाथ में तलवार ले लिया, और रुक्मिणी जी रथ पर बैठी। जब ही भगवान रथ पर से उतरना चाहते थे तलवार लेकर के, तब ही रुक्मिणी जी उनके चरणों पर गिर पड़ी। देख लें कि अब तो ये इसका वध कर ही देंगे। लेकिन देखिए संसार में कितना ज्ञान होता है। वही रुक्मी कृष्ण का वध करने के लिए कितना प्रयास कर रहा था, और यदि उसका वध भगवान कर दें तो इसमें रुक्मिणी को दुख की क्या बात है। इसीलिए बलराम जी ने तत्व ज्ञान दिया है रुक्मिणी जी को, बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। यद्यपि रुक्मिणी जी जैसी महान स्त्री के लिए यही उचित था समागम, परंतु रुक्मिणी जो कुछ किया है शुरू से अंत तक, रुक्मिणी के साथ जो व्यवहार किया है, इस तरह से रुक्मिणी को नहीं चाहिए था उसके जीवन की रक्षा के लिए प्रयास करना, क्योंकि जीवित रहकर आगे भी तो वो ऐसा ही रहेगा करेगा, अंततः एक दिन बलराम जी के हाथ से मारा जाएगा। तो रुक्मिणी जी भय से कांपने लगी। दृष्ट्वा भ्रातृर्वधोद्योगम रुक्मिणी भय विह्वला पतित्वा पादयोर्भर्तुर्वाच करुणम सती। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि हमारे पति देव श्री भगवान हमारे भाई रुक्मिणी का वध करना चाहते हैं, वध उद्योगम, तो भय विह्वला, भय से विह्वल हो गई, व्याकुल हो गई और तुरंत अपने भर्तु के, अपने स्वामी के दोनों चरणों में गिर गई। और भगवान की प्रिया है परंतु भगवान में स्नेह कृपा उत्पन्न करने के लिए चरण में गिर गई। तत्काल चरण में गिर गई, भगवान के हाथ को नहीं पकड़ सकती थी, इतना भयावह ये क्षत्रिय होते हैं। तलवार लिए है मारने जा रहे हैं तो ऊपर रुक्मिणी ने हाथ नहीं पकड़ा भगवान का, चरण में गिर गए। पतित्वा पादयो भर्तु, भर्तु के भर्तार के चरणों में गिर गई। और वाच करुणम सती, और कुछ बात बोली बहुत दीन स्वर से। अगले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बेचारी बोल नहीं पाई, भय के कारण कंठ से आवाज नहीं आ पाई, वो रोने लगी। लेकिन पहले उसने कुछ कहा होगा कि मत वध कीजिए, मत मारिए, मत मारिए, मेरा भाई है, छोड़ दीजिए। तो वह भगवान के लिए अनेक विशेषण बोलने लगी रुक्मिणी जी। तो बोल रही, जोगेश्वराप्तमेयात्मन देव देव जगतपते हन्तुम नार्हसि कल्याण भ्रातरं मे महाभुज। हे महान शक्तिशाली, ये परम बलिष्ठ और सुंदर भुजा वाले, हे जोगेश्वर, हे अचिंत योग शक्ति के स्वामी या जोगेश्वरों के भी ईश्वर, और हे अनंत शक्ति वाले, हे देवताओं के भी देवता, देवताओं के भी पूज्य, और हे समस्त जीवों का पालन करने वाले, मैं भ्रातरम हम तुम न और हसी, आप मेरे भाई का वध मत कीजिए। मैं भ्रातर हूं, मेरे भाई का मत वध कीजिए। आप कल्याण स्वरूप, आपसे तो सबका हित होता है, मंगल होता है, आप स्वयं परम शांत और कल्याण स्वरूप हैं, अतः आप ऐसा कार्य मत कीजिए। रुक्मिणी जी ये नहीं चाहती थी कि ये दुनिया में संवाद जाए कि कृष्ण ने अपने साला का वध कर दिया, यह रुक्मिणी जी की इच्छा थी, और भाई के प्रति ममता तो थी ही। तो भगवान के परिकरों में भी कभी कभी परिवार के प्रति देखा जाता है इस तरह का मोह, परंतु वह भगवान की इच्छा से होता है। जैसे अर्जुन, अर्जुन भगवान के नित्य परिकर है, उनका शरीर पूर्ण छिन्मय है भगवान के समान, उनमें बंधुओं के प्रति परिवार के प्रति मोह हो जाए, अज्ञान हो जाए, स्नेह हो जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि उनके स्नेह का सारा आस्पद स्थान भगवान है, दूसरा नहीं। परंतु अर्जुन में देखा गया कि भगवान के सामने रथ पर रो रहे थे कि हाँ ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यह अज्ञान कैसे आ गया अर्जुन के मन में, ये भगवान की इच्छा थी, गीता का उपदेश करना चाहते थे। अन्यथा अर्जुन में अज्ञान संभव नहीं। तो उसी प्रकार भगवान की पत्नी रुक्मिणी जी में इस प्रकार का अज्ञान कैसे आ सकता है, संभव नहीं है। परंतु भगवान कुछ लीला करना चाहते हैं, इससे कभी भी किसी भी परिकर में अज्ञान आ जाएगा भगवान की इच्छा से। तो वह ऐसा अज्ञान नहीं है जैसे हम लोगों में अज्ञान रहता है महामाया के आवेश में। तो उस समय भी वे परिकर योग माया के ही दबाव में रहते हैं, महामाया के नहीं। तो रुक्मिणी जी इस तरह से भयभीत होकर भगवान के लिए अनेक संबोधन कर रही हैं, कहने लगे कि आप हमारे भाई का वध मत कीजिए। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच तया परित्रास विकंपितांगया सुचा वसुस्यद मुख रुद्ध कंठया कातर्ज विश्रंसित हेम मालया गृहीत पादः कर्णो निवर्तत। तया गृहीत पादः कर्णो निवर्तत। तया रुक्मिण्या, जब रुक्मिणी जी ने भगवान के दोनों चरण कमल को पकड़ लिया गिर गई चरण में, तो भगवान करुण को करुणा आ गई, दया आ गई रुक्मिणी जी के प्रति और उसके भाई के प्रति, रुक्मी के प्रति भगवान को करुणा आ गई। देखिए इतना वो युद्ध किया, उपाय किया कृष्ण का वध करने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान का चरण कमल पकड़ लिया रुक्मिणी जी ने, तो उन्हें दया आ गई। ठीक है, कोई तो निवर्तत, वे निवर्तित हो गए, तलवार रख लिए, हाथ नहीं रखे थे, म्यान में नहीं रखे, हाथ में रखे और ठीक है नहीं बात करेंगे। रुक्मी का जरा व्यवहार देखिए और भगवान का है। रुक्मी इतना क्रोध में था, इतना असहनशील कि कहां से कहां ऐसे आया, क्या क्या किया, और इधर भगवान केवल चरण में गिर गई रुक्मिणी जी बस इसी प्रसाद से, ठीक है नहीं। जबकि पूरा पूरा वध के योग्य था, मारने ही योग्य था, लेकिन भगवान भगवान है, महान है। यह महानता है वास्तव। मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी ने कोई अपराध कर दिया है, वास्तव में बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, लेकिन बेचारा यदि चरण में गिर जाए तो उस अपराध पर ध्यान नहीं देना चाहिए। महान पुरुष का ऐसा स्वभाव होता है, वो द्रवित हो जाता है, ठीक है कोई बात खत्म करो। अब जो नीच लोग होते हैं उस अपराध कोई मन में बांध लेते हैं, भूलते ही नहीं है, सांप जैसे क्रोधी होते हैं। जैसे कहा जाता है कि गेहुआन सांप अपना अपमान करने वाले मारने वाले को कभी नहीं भूल पाता है, उसका क्रोध बना रहता है 12 वर्ष पर भी दस सकता है और पहचान लेता है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि उसके आंखों में वीडियो कैसेट जैसा कुछ होता है, कैमरा जैसा, कि अगर किसी ने उसको मारा है तो उसका फोटो आ जाता है और पहचानता है सांप, कई वर्षों के बाद भी डसते हुए देखा गया है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा किया है तो उसको डस लेता। तो नीच लोगों का स्वभाव इस प्रकार का होता है, किसी ने कोई कठोर वचन बोल दिया है, कुछ हानि कर दिया है, तो उसको भी नहीं भूल पाते हैं। लेकिन महान पुरुष तो कुछ भी भूल जाते हैं, कोई अपकार किया है उसकी याद ही नहीं आती, और उपकार हमेशा याद आती है। उपकार हमेशा याद आता है, किसी ने थोड़ा भी उपकार किया है तो उसको भूल नहीं पाते। संस्कृत में एक श्लोक में एक व्यक्ति ने कहा है, यदि वास्तव में सज्जन व्यक्ति कोई है तो वह थोड़े से उपकार को भी नहीं भूल पाता। तो क्या उपकार बता रहा है कवि, कि कोई आदमी बैठा है और उसके केस में कोई तिनका सट गया है, मान लीजिए प्रणाम करने में किसी के केस में सिर में तिनका सट गया है, और कोई दूसरा व्यक्ति बता दिया अरे आपके केस में तिनका है, और वह व्यक्ति तिनका हटा करके फेंक दे, तो यदि सज्जन है तो जीवन भर इस उपकार को नहीं भूल सकता है। यही इतना इतना उपकार कि उसने बता दिया कि आपके सिर में तिनका सटा हुआ है, इसको भूल नहीं पाएगा यदि सज्जन व्यक्ति है तो। और अपकार की कोई भी मात्रा हो उसको भूल जाता है, अपकार याद नहीं रहता है, उपकार याद रहता है। देखिए भगवान की विशेषता यहाँ पर, और क्या उनको समझाया गया और क्या कहा गया है। वो मारने आ रहा है, गाली देता हुआ आया, क्या क्या अस्त्र चलाया, ये किया वो किया, अंत में तलवार लेकर कृष्ण का वध करने जा रहा है, लेकिन भगवान ने उसके तलवार को काट दिया और इसके बाद स्वयं तलवार लेकर के मारने चले। और उस दशा में कोई रोक, क्या कोई रोक सकता है किसी व्यक्ति को? कोई किसी को मारने आ रहा है और उसका प्रयास भले किसी तरह से विफल कर दे जिसको मारा जा रहा है, वह मारने चले और उस समय कोई रोके तो वो मानेगा? बीच में आने वाले को भय होगा कि हमको भी मार सकता है, लेकिन भगवान में कोई क्रोध नहीं था। रुक्मी के लिए कई बार इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि वो क्रुद्ध था, सुसंलब्ध था, लेकिन भगवान क्रोध में नहीं थे। भगवान कैसे क्रोध में हो सकते हैं? संस्कृत के एक श्लोक में एक भक्त ने बताया है, ये तो भगवान की बात है, भगवान तो बहुत दूर की बात है, भगवान के भक्त के विषय में कहता है कि जैसे समुद्र के विशाल जलराशि को एक तिनका की अग्नि से गर्म नहीं किया जा सकता है, उसी तरह किसी कृष्ण भक्त के हृदय को शुद्ध नहीं किया जा सकता है किसी भी अपव्यवहार से, इतना वो शांत होता है। जैसे मान लीजिए पुआल है, तिनका है और आगे जल करके लाल हो गया है, और उसको हीटर समझ करके कोई समुद्र में डाले कि हम गर्म कर देंगे समुद्र को, तो समुद्र को क्या गर्म करेगा? स्पर्श होते ही वो स्वयं खत्म हो जाएगा, तो हवा में ही खत्म हो जाएगा लाल उल्का, और समुद्र को क्या गर्म करेगा? ऐसे ही किसी भी व्यक्ति का दुर्व्यवहार किसी वैष्णव को क्या शुद्ध कर सकता है? वो अनंत शांति का सागर होता है, किसी भी तरह से शुद्ध नहीं हो सकता। तो जिनके चरणों की कृपा से, जिनका भजन करने के कारण संतों में यह गुण आ जाता है, वे प्रभु कैसे शुद्ध हो सकते हैं? भृगु जी ने तो भगवान के छाती में लात मारा था, लेकिन वो बिल्कुल शुद्ध नहीं हुए, उल्टे उनके चरण को सहलाने लगे, कहने लगे कि मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपके कोमल चरण कमल में चोट लग गई होगी। भृगु जी ये बात सुनकर के रोने लगे, इसी में भागवत में कहा गया। अब वो क्या कहे, और उनको ऋषियों ने भेजा था कि आप परीक्षा लेकर आइए तीनों देवताओं में कि कौन वास्तव में भगवान है। तो भृगु जी ने जा करके सब कुछ सुना दिया। ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो गए थे प्रणाम नहीं करने से, शिव जी थोड़ा दुर्वचन बोलने से तो जान मारने जा रहे थे भृगु जी को, अगर कहीं उनके छाती में लात मार दी होते तो भृगु जी का आज नाम निशान रहता ना। तो केवल दुर्वचन बोलने से कि तू मलेच हो गए और दक्षिण साफ दिया है, नहाते धोते नहीं है, मेरे पास आया तब मारने चले, रोक लिया माता पार्वती ने चरण में गिर करके, तब जाकर भृगु जी जीवित बचे। लेकिन भगवान के पास आकर वैकुंठ में सीधे उन्होंने चरण प्रहार कर दिया, और उस पर भगवान ने अपार शांति, अपार क्षमा, समुद्र भगवान है, समस्त गुणों के समुद्र है। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि रुक्मिणी जी जब ही चरण पकड़ाते हैं भगवान करुण, करुणामान हो गए, दया आ गई और न्यवर्तत। कैसी थी रुक्मिणी जिसने भगवान के चरण को पकड़ा, तो इस पर बता रहे सुखदेव गोस्वामी, परित्रास विकंपितांगया, परित्रासे न विकंपितानी अंगानी जस्या तया। जिस रुक्मिणी के अंग बहुत कांप रहे थे, विकंपित थे, क्यों? वित्रास के कारण, भाई का वध कर देंगे भगवान, इस भय से रुक्मिणी के सारे अंग कांप रहे थे, थर थर, पैर कांप रहा था, हाथ कांप रहा था, शरीर कांप रहा था। विकंपित आने, विकंपित का थे विशेषण कंपित। एक तो ऐसे ही अबला स्त्री और भाई का वध होने जा रहा है, तो इस दृश्य को देख करके वो कांपने लगी, बिल्कुल थर 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 कांपने लगी। सुचा व सुष्यद मुखरुद्ध कंठ है, और सुचा व सुष्यद मुख, शोक से मुख सुख गया। जो पहले प्रसन्न मुख था वो भाई के मरण की आशंका से सुख गया, और मुखरुद्ध कंठ है, उसका कंठ रुद्ध हो गया, वो बोल नहीं पाई भय के कारण। आगे पहले जो बोला भगवान को संबोधित किया उतना ही किया। और कातर जो विष्णु सित हेम मालया, कातरता से उसकी स्वर्णमयी मालाएं बिखर गईं। विवाह के अवसर पर बहुत आभूषणों से सजी थी रुक्मिणी, माला इधर लगाई थी, कंठ में लगाई थी और कमर में सब जगह, लेकिन वो मालाएं विश्रंसित हो रही थी, खुल गई थी। इस तरह से रुक्मिणी जी भगवान के चरणों को पकड़ी, तो भगवान करुणा से द्रवित होकर के रुक्मिणी का वध नहीं किए। क्या किए? वध तो नहीं किए, लेकिन दोनों हाथों को पीछे करके और मुसुक चढ़ाकर पहले बांधे उसको। वध नहीं करना यही बहुत बड़ी करुणा थी। तो बांधे, चैले न बद्ध्वा तम साधु कारिणम सस्मश्रुकेशम प्रवपन विरूपयत तावन ममर्दुः परसैन्यम अद्भुतम जदु प्रवीरा नलिनीं जथा गजः। चैले न बद्ध्वा, कपड़े से भगवान ने उसको बांधा, वहां रस्सी वस्सी तो थी नहीं, तो कपड़े से चाहे उसके दुपट्टा से चाहे अपने पीताम्बर से बांधे होंगे जो भी हो उसको बांधे। चैले न बद्ध्वा तम असाधु कारण, वह भगवान का अनिष्ट करना चाहता था, मारना चाहता था, तो उसको भगवान ने बांधा तो उचित किया। श्रील सुखदेव उसमें काटने लगे, लेकिन सस्मश्रु केशम, कहीं कहीं दाढ़ी छोड़ देते थे, कहीं कहीं मूछ छोड़ देते थे, कहीं कहीं केश छोड़ देते थे, और काटने लगे। कोई बहुत आदर से नहीं सेविंग कर रहे हैं, तिरस्कार करते कर रहे, तलवार से कहीं सेविंग किया जाता है। रुक्मी भी धन्य हो गया कि भगवान नाई का काम कर रहे हैं। यह क्षत्रियों के लिए मरण जैसा है। अभी हमारे गांव के पास गांव है तेतरी, वहां से एक व्यक्ति अंग्रेजों के समय बीत गया था, तो हमारे गांव पर व्यक्ति आए थे, बड़ी बड़ी मूछें रखे थे कड़ी कड़ी, तो बता रहे थे उनके विषय में एक व्यक्ति के, उन पर एक केस था, तो बहुत मूछ ताने हुए थे, जिस दिन हाजिरी देनी थी तो लोग कहे कि जज के सामने इस तरह से मूछ कड़ा करके नहीं जाना चाहिए, इसको मूछ को गिरा लो, ऐसा लोगों ने कहा, ठीक नहीं है जज के सामने, उसका मूड खराब हो जाएगा। और तो वो व्यक्ति कहता है मूछ गिराने के पहले गर्दन काट दो, ये मैं सह लूंगा, लेकिन मूछ नहीं गिरा सकता, जज हो चाहे कोई हो, मूछ नहीं गिरा सकता, और वो नहीं गिराए। उस कार्य से जज प्रसन्न हुआ था, उसने रिमार्क किया था कि यह निर्भय आदमी है, और उनको माफ किया था। ये सब के घटना है। तो इस तरह से क्षत्रियों में मूछ दाढ़ी काट देना, और वो भी काटे तो पूरा से भी भजा तो कोई बात नहीं, बीच बीच में छोड़ देना सब समस्या के सम, बहुत बड़ा अपमान था। उसी तलवार से भगवान उसको सेविंग कर रहे थे, किस उद्देश्य से? विरूप करने के लिए।
उसको विरोध करने के लिए। तो इस तरह से जब तक भगवान इधर केस काट रहे थे, उसका सही कर रहे थे, तो उसी समय जदु प्रवीरा, जादव प्रवीर गण, जैसे बलराम जी आदि, परसन्न मधुतम शत्रु सेना को ममर्द नष्ट कर रहे थे। जब भगवान जब रुक्मी से युद्ध कर रहे थे तो उसके केस काट रहे थे, उस समय जादव लोग मार रहे थे रुक्मी की सेना को, उस सेना को अद्भुतम कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। किस तरह से राउंड रहे थे जैसे गजा है नलिनी, तो वो लोग भी बहुत जान से नहीं मार रहे थे, केवल परास्त कर रहे थे, जैसे हाथी के समुदाय नलिनी, नलिनी का अर्थ होता है बेंत का बन, बांस का झुरमुट, उसको रौंदते हैं, वैसे वो लोग रौंद रहे थे। हाथी पहले रौंदते हैं झुरमुट को और चले आते हैं, तो बाद में सब धीरे धीरे वो झुरमुट खड़े हो जाते हैं, तो वो लोग केवल परास्त किए, मारे पीटे, फिर उठ उठ कर भाग गए, इसका मतलब ये है। ममर्द का ये अर्थ वध नहीं किए। तो इस तरह से भगवान ने विरोध किया। जब भगवान ने केस को लगभग काट चुके थे, मुझ को भी काट चुके थे, विरोध कर चुके थे, तो उस समय समस्त जादव पहुंचे भगवान के पास, युद्ध में शत्रुओं को परास्त करके वे आगे बढ़े, तो देखे कि रुक्मी इस तरह से विरूप हो गया है और कपड़े में बांधा हुआ है, वो चल भी नहीं सकता। कृष्णांतिकम उपव्रज ददृशुस्तत्र रुक्मिणम, ददृशु बहुवचन में है, ये जदु प्रवीरगण कृष्ण के निकट आकर, कृष्ण अंतिकम उपव्रज, कृष्ण के निकट आकर तत्र रुक्मिणम ददृशु, वहां रुक्मी को देखे, और रुक्मी को देखे मतलब इस तरह से कुरूप रूप भेष में देखे, सब मुकुट सुकुट पगड़ी उतार दिया गया था और विरूप कर दिया गया था काट करके, तो लगभग मरा जैसा हो गया था, मतलब एक क्षत्रिय का, एक वीर का इस तरह से अपमान हुआ था, तो अपने को मरा जैसा अनुभव कर रहा। तथा भूतम हतप्रायम दृष्टवा संकर्षणो विभु विमुच्य बद्धम करुणो भगवान कृष्णम अब्रवीत, तो सब लोग तो देखे ही, तमाशा देखने लगे कि अरे ये तो रुक्मी की ये दशा हो गई, ये दशा हो गई। उसके पहले लोगों ने ये नहीं देखा था कि यह कृष्ण का वध करने के लिए क्या क्या किया, तो दया सब में आ रही थी, अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो श्री बलराम जी तो सहज दया के समुद्र है। तथा भूतम हतप्रायम, तथा भूतम का इस तरह से, तथा भूतम मुछ दाढ़ी केस काटा हुआ बीच बीच में छोड़ा हुआ, तो हतप्रायम बलराम जी ने देखा कि ये तो लगभग मर गया है, तो शारीरिक कोई ऐसी क्षति नहीं हुई थी, लेकिन अपमान जो हुआ तो इस कारण से बलराम जी देख रहे हैं हतप्रायम लगभग मर चुका है। दृष्टवा संकर्षण विभु, सर्वसमर्थ संकर्षण जो दो दलों में प्रेम कराते हैं, स्नेह कराते हैं, वे तुरंत आए और विमुच्य बद्धम, पहले तो हाथ खोल दिए, कपड़ा खोल दिए बलराम जी, पूछे नहीं कृष्ण से, वो समझ गए थे कि कृष्ण ने बांधा है, लेकिन रुक्मी को खोलने में भगवान बलराम जी संकोच नहीं किए, वो कृष्ण से पूछे ना, विमुच्य बद्धम, वो बद्ध था तो उसको खोल दिए, क्यों, करुणा, करुणा आ गई उसकी दशा को देख करके भगवान बलराम से, क्यों करुणा आ गई, क्योंकि भगवान दया के समुद्र, अनंत दयालु, इसलिए खोल दिए और कृष्ण से इस प्रकार बोले, कृष्णम अब्रवीत, कृष्ण से बोले, असाधु इदं तया कृष्ण कृतम अस्मज्जुगुप्सितम वपनम स्मश्रु केशानां वैरूप्यम सुहृदो बधः। रुक्मिणी जी बहुत दुखी हो गई थी इस दृश्य से, वध की तो बात छोड़ दीजिए, वध नहीं हुआ वो तो ठीक हुआ, भाई को इस तरह विरूप किया गया इससे रुक्मिणी जी बहुत दुखी हो गई थी, लगभग मार ही दिया गया था उसको। तो श्री बलराम जी प्रकारांतर से रुक्मिणी जी को सांत्वना देने के लिए पहले कृष्ण पर आक्षेप करते हैं। कृष्ण त्वया इदम असाधु कृतम, तुमने ये बड़ा गलत किया। ये रुक्मिणी जी को सुना रहे हैं भगवान बलराम जी, तुमने बहुत गलत किया। और यदि आ करके बलराम जी यह कहते कृष्ण बहुत अच्छा किया, इस बदमाश को मारो मारो मारो, तो रुक्मिणी तो ऐसे ही बेहोश हो गई होती। और कोई भी स्वाभाविक आता तो ऐसे ही करता, लेकिन श्री बलराम जी करुणा के समुद्र हैं, वो जानते हैं इसी ने कृष्ण का विवाह नहीं होने दिया था, रोका था, सब किया था, लेकिन फिर भी करुणावान है, भूल गए उसके दुर्व्यवहार। तो कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण त्वया इदम असाधु कृतम, तुम्हारे द्वारा ये असाधु कर्म हुआ है, अच्छा काम नहीं हुआ। साधु माने अच्छा, क्या अच्छा नहीं हुआ है? भगवान मानो अगर कहे ये कैसे, अब बताइए भगवान के काम को भी कोई क्रिटिसाइज करे, ये भी गलत करने लगे। भगवान थोड़े गलत करते हैं, अरे वो तो जान मारने जा रहे थे, वो कितना गलती होती बलराम जी की दृष्टि में। अभी तो विरूप करने को कह रहे हैं कि तुमने ठीक नहीं किया, ये अच्छा काम नहीं किया। तो मान लीजिए अगर भगवान कहें कि ये जो जो किया है आपको पता है किस तरह से मुझे मारना चाहता था, मान लीजिए भगवान अगर कहें, तो हमने यह किया तो क्या गलत किया, केवल केस काट दिया, और एक आध महीना में बढ़ ही जाएगा। लेकिन ये केस काट दिया तो क्या गलत किया है? तो बलराम जी कहते नहीं नहीं, अस्मत जुगुप्सितम, हम लोगों जैसे व्यक्ति के लिए निंदा की बात है, दूसरे लोग ऐसा किया करें, तुमको हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, वास्तव में ठीक है, इसने बहुत अपराध किया, यह किया वह किया, लेकिन हम लोग क्या हैं, अपने को तो देखना चाहिए ना। अस्मत जुगुप्सितम, अस्माकम जुगुप्सितम निंदनीयम इति, ये हम लोगों के लिए निंदनीय काम, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये तो नीच है ही, जो कुछ करे, लड़े, गाली दे, कुछ भी करे, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बपनम स्मश्रुकेशानम वैरूप्यम सुहृदो बधा, तो मान लीजिए भगवान अगर ये कहें कि भैया इसने तो इतना अपराध किया है, इतना अपराध किया है कि इसका वध कर देना चाहिए था, परंतु रुक्मिणी पैर पर गिर गई, अब मैं क्या करूं, इसको छोड़ दिया, ये तो वध करने जो काम किया है, आप तो कुरूप करने पर इतना रंज हो रहे हैं। तो भगवान बलराम जी कहते हैं, वपनम स्मश्रुकेशानम वैरूप्यम सुहृदो बधा, दाढ़ी मूछ बेढंगा काट करके किसी सुहृद को विरूप कर दिया जाए अपने संबंधी को, तो यही उसका वध है। क्या तुम जीवित छोड़े हो इसको, देख नहीं रहे हो बेचारा मर गया। इसकी क्या हालत है, कृष्ण जरा विचार करो, एक सम्माननीय राजकुमार है, रुक्मिणी का भाई है, और अब तक क्या जी रहा है, क्या ये मर चुका ना, देखो क्या हालत है, तो तुमने इसके दाढ़ी मूछ को काट करके विरूप किया, तो इस प्रकार से एक एक प्रकार से इसका वध हो गया, तो यह करना उचित नहीं है हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए निंदा की बात, लोग निंदा करेंगे, देखो कृष्ण इतना महान होकर के ऐसा काम किया। श्री बलराम जी की बात वास्तव में विचारणीय है, कौन काम किसको शोभा देता है विचार करना चाहिए। भगवान के द्वारा क्षमा होना, कृपा होना ही अच्छा लगता है ना? ऐसा नहीं भगवान बदला ले लें रुक्मिणी से तो कोई भगवान की प्रशंसा करेगा, ऐसी बात नहीं। और रुक्मिणी जी ने चरण पकड़ लिया तो भगवान माफ कर दिए, तो इस पर इस सुनने में अच्छा लगता है कि तो भगवान करुणामय है, किसी के अपराध को भूल जाते हैं। वही श्री बलराम जी कह रहे अस्मत् जुगुप्सितम्, हम लोगों के लिए निंदा की बात, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की दाढ़ी काटना, मुंह काटना, बाल काटना और किसी की शोभा नहीं बढ़ा सके तो उसको कुरूप क्यों करेंगे। अस्मत् जुगुप्सितम् पर सीता श्रीधर स्वामी ने बहुत सुंदर लिखा कि हम लोगों के लिए निंदा की बात है, वैसे जनरली निंदा की बात नहीं है, ऐसे अपराधी का दाढ़ी मुझ काट लेना दूसरे लोग काटे चल, लेकिन हम लोग नहीं करना चाहिए। यह कह करके अब फिर रुक्मिणी जी को समझाते हैं, वहां वो समझी कराना है, उनको भी समझाना है, और तीनों है वहीं पर, रुक्मी भी है, रुक्मिणी भी है और कृष्ण है, और सारे जादव भरे पड़े और भगवान बलराम जी वहां समझा रहे हैं। रुक्मिणी बेचारी रो रही थी भाई के विरूप रूप को देख करके, तो उनको समझा रहे हैं भगवान, मई वास्मान साध्य सुये था भ्रातुर वैरूप्य चिंतया, सुख दुख दो न चान्योस्ति जतः स्वकृत भुक्पुमान। हे साध्वी, हे पतिव्रता शिरोमणि, तुम अस्मान माँ एव असूयथा, हम लोगों के प्रति दोष दृष्टि मत करो, और कृष्ण को अपने साथ आत्मसात करके बोल रहे हैं, अस्मान हम लोगों के प्रति दोष दृष्टि मत करो, कृष्ण के प्रति चाहे हम लोगों के प्रति जो भी समाज है, हम लोगों के प्रति दोष दृष्टि मत करो, हम लोगों का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा भाई विरूप कर दिया गया है, इस दुख से हम लोगों पर यह विरूप करने वाले कृष्ण आदि पर तुम दोष बुद्धि मत करो, ये मत सोचो कि ये लोग गलत किए हैं, हमारे भाई को कुरूप कर दिए हैं, कोई तुम्हारे भाई को कुरूप नहीं किया है। सुख दुख दो न चान्योस्ति, किसी भी व्यक्ति के लिए सुखदह दुखदह अन्य न अस्ति, कोई किसी को सुख नहीं देता है देवी, और कोई किसी को दुख नहीं देता है, सभी अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। अच्छा भगवान बलराम जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं, अगर देखो विचार करो तो किस तरह से रुक्मी अपने किए हुए का फल भोग रहा है, तो जब रुक्मिणी का हरण कर लिया कृष्ण ने तो उसको फिर इधर नहीं आना चाहिए था, और आया भी तो कृष्ण का वध करने का प्रयास किया, यह उचित नहीं था, यह अपने किए हुए का फल भोग रहा है, नहीं तो कृष्ण काहे को किसी को मारने जाए, अब तक थोड़े किसी की दाढ़ी काटा है और मूछ और केस काटा है, लेकिन यह अब ये आ गया है मरने के लिए आ रहा है, तो कृष्ण ने इसको जीवित छोड़ दिया, यही बहुत बड़ा दान है रुक्मिणी, समझी यही बहुत बड़ा दान है, और ये केस कटने पर तुम दुख का अनुभव कर रही, ये स्वयं अपना कारण है, सुख दुख दो न चान्योस्ति, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्रात, रामायण में लिखा गया है निषाद राज लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी निषाद राज को उपदेश कर रहे हैं गंगा जी के तट पर, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपना कर्म व्यक्ति भोगता है, अगर सुख देने वाला कर्म है तो सुख मिलता है, दुख देने वाला कर्म आया है तो दुख मिलता है, कोई किसी को सुख नहीं देता है, दुख नहीं देता, यह सत्य सिद्धांत है, इस संसार में माता पिता है, भाई है, संबंधी है, लेकिन कोई किसी को सुख नहीं दे सकता है, दुख भी नहीं दे सकता है। यदि मान लीजिए किसी को बुखार आ गया है, शरीर में बहुत तकलीफ है, तो आप अपने घर में 3600 व्यंजन और 54 भोग बनाकर क्या सुख देंगे उसको, वो खा ही नहीं सकता है, मुख में डाल ही नहीं सकता है, माँ चाहे कि ये खा ले ये खा ले ये खा ले, सुख देगा नहीं। और कई बार ऐसे होता है कि लड़का दुख भोगता है, उसको मां ने नहीं दिया दुख, पिता ने नहीं दिया, जैसे बच्चे को बुखार आ जाता है तो कौन दिया दुख, बुखार को कौन दिया, परिवार का कोई सदस्य इंजेक्ट किया क्या बुखार, कोई नहीं दिया है, भोगता है, अपना कर्म जैसा उसके अनुसार सुख दुख लिखा रहता है, भोगता है। स्वकर्म भूख पुमान, स्वकृत भूख पुमान, अपना जो कर्म किया है वही भोगता है। स्वकृत भूख पुमान पर बलराम जी का इमीडिएट यह व्यंग है, ये अपना किया हुआ भोग रहा है, यही इसका काम था। जब तुम चाहती थी कृष्ण से विवाह करना, कृष्ण चाहते थे, तुम्हारे पिताजी चाहते थे, सारा समाज चाहता था, उसके अनुसार हुआ, तो ये और आ गया लड़ने के लिए। ये कृष्ण इसको घर में पकड़ करके जबरदस्ती से सेविंग किए होते तब माना जाता कि भाई कृष्ण दुख दे रहे, ये तो आ गया डायरेक्ट मरने के लिए आ गया ना। तो किसी की गर्दन काटने जा रहा है और वह व्यक्ति इसका केस काट दे तो ये कौन अपराध है, जरा सोचो। ये सांत्वना देने की एक रीति है कि अपना कर्म फल भोग रहा है, और हमारे समाज से तो जितना कर्म फल होना चाहिए था उतना फल नहीं आया इसके पास। फल तो ये होना चाहिए था कि इसकी गर्दन कटनी चाहिए थी भगवान का, लेकिन कृष्ण ने इसका केस काट दिया, तो ये तो कृपा रही ना। इसीलिए हम लोगों पर तो दोष दृष्टि मत करो, गलत काम नहीं हुआ है। ऐसे यह भी नहीं कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन रुक्मिणी से ये कह रहे हैं कि गलत काम नहीं हुआ है। मान लीजिए किसी का गर्दन काटने का निश्चय किया गया हो और करुणा करके वो जज ये कह दे कि नहीं इसका केवल केस काट दो, तो क्या ये दंड है? यह जो काम किया है शुरू से अंत तक निश्चित यह वध के योग्य है, लेकिन कृष्ण ने इसका केवल केस काटा, और इस पर भी तुम दोष दृष्टि करो कृष्ण के प्रति, तो यह ठीक नहीं। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि मां मैव अस्मान असूय था, हे साध्वी हम लोगों के प्रति नहीं कभी भी दोष बुद्धि मत करो, गलत नहीं हुआ, क्योंकि अपना कर्म फल जीव भोगता है, दूसरा कोई उसको सुख दुख देने वाला नहीं। फिर कृष्ण से कहते हैं केवल रुक्मिणी को ही नहीं सांत्वना दे रहे हैं, रुक्मिणी को सांत्वना तो दे रहे हैं, उसके सांत्वना देने के दो फेज है, कृष्ण को डांटना और रुक्मिणी से ये कहना कि सब ठीक हुआ है, कोई गलत नहीं हुआ। बहुत बुद्धि के अथाह सागर हैं भगवान बलराम जी, तो समझाने में पटु हैं। तो कृष्ण से कहते हैं, पुनः कृष्ण आक्षेपति, कृष्ण पर आक्षेप करते हैं, बंधु बधारह दोषोपि न बंधोर बधमर्हति। कृष्ण देखो, कोई अपना बंधु है, बंधु का अर्थ जिसके साथ कोई बंधन है, संबंध है, तो संबंधी है और ऐसा दोष कर दिया, ऐसा अपराध कर दिया है कि बधारह, बध के योग्य दोष कर दिया है, गलती कर दिया है, फिर भी बंधु के द्वारा बंधु का वध नहीं होना चाहिए। न बंधुर वध मरत, अपना बंधु है, किसी भी संबंध में बंधा हुआ, चाहे बहनोई है, साला है, मामा है, काका है, भाई है, जो भी है, माता पिता आदि की बात तो बहुत दूर की है। ये सब संबंधी हैं और ऐसी गलती कर दिए हैं कि उनका वध करना ही धर्म है, फिर भी बंधु को चाहिए कि उनका वध ना कर। और प्रकारांतर से तो बलराम जी यही कह रहे हैं, तुमने वध किया नहीं, ठीक किया, लेकिन रुक्मिणी जी ये समझें कि ये डांट रहे हैं, ये डांट रहे हैं। तो बलराम जी कह रहे हैं कि बंधु गलती करे, यहाँ इतनी गलती कि वध करना उचित है, फिर भी बंधु को वध नहीं करना चाहिए, तो भगवान ने तो वध किया नहीं है, वास्तव में बधा रहा था। तो बलराम जी कहते त्याज्य स्वेनैव व दोषेण हतः किं मन्यते पुनः। यदि अपना बंधु है, बहुत बड़ी गलती कर दिया है, तो अपने दोषों से ही वह त्याज्य है, उस दोष के कारण उसका त्याग कर देना चाहिए। यदि किसी अपने प्रिय व्यक्ति का, संबंधी का त्याग कर दिया जाए केवल उसके दोष के कारण, तो यही उसका वध है। और त्याग हो गया यही वध है, तो जब वध हो गया तो हतः किम हन्यते पुनः, जो मार दिया गया है हतम किम हन्यते पुनः, जिसका वध हो चुका है उसका फिर क्या वध करना है, त्याग कर देना उपेक्षा कर देना यही उसका वध है, और ऊपर से क्रूर करना आदि, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लो रुक्मिणी के साथ तुम्हारा विवाह होता है, तो रुक्मिणी के साथ तुम्हारा संबंध होता है और रुक्मिणी से तुम बात नहीं करते, कभी द्वारका बुलाते नहीं, इसके पास नहीं आते, यही इसका वध है, ऊपर से केस काटने की क्या जरूरत है। यदि रुक्मिणी के साथ संबंध नहीं रहे तो यही इसका वध हो जाएगा। बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं, लोक में इन सब बातों को ग्रहण करके चलना चाहिए। इस संसार में बहुत मनुष्य है लेकिन कुछ अपने संबंधी होते हैं, किसी न किसी संबंध में बंधे होते हैं, तो उनसे अगर कोई चूक हो जाए, गलती हो जाए, तो बड़ी बड़ी गलती के लिए भी उन्हें दंडित नहीं करना चाहिए, कुछ उपेक्षा कर देनी चाहिए, अवज्ञा करनी चाहिए, लेकिन उनका वध नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ा दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे मान लीजिए पत्नी है, वह भी एक बंधु है, बंधु का अर्थ होता है वो संबंध में बंधी है, लेकिन पत्नी से कोई गलती हो जाए तो क्या करेंगे। शास्त्र कहता है कि अपने गृह के छिद्र को ढकना चाहिए, घर में कोई गलती हो गई पत्नी से, बच्चे से, किसी से, तो क्या करेंगे, उसको न्यूज़पेपर में देंगे, बताइए। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि किसी को पता ही ना चले कि हमारी पत्नी से कोई चूक हुई है, गलत किया है, या आज वो भोजन नहीं बनाई टाइम से, तो क्या छाप देंगे कि हमारी पत्नी इतनी उदंड है कि हमारे लिए भोजन नहीं बनाई, कि सू करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। संबंधी के दोष को क्षमा किया जाता है। बहुत सुंदर बात श्री बलराम जी बता रहे हैं, पुत्र से कोई गलती हो गई, भाई से गलती हो गई, या अपने बहनोई से, साले से, तो उसे बहुत सीमा तक सहन करना चाहिए। ठीक है, इसकी इसकी जितनी बुद्धि थी, या ऐसे रुक्मिणी का विरोध किया, तुम्हारे विवाह का विरोध किया, और वध करने की प्रतिज्ञा किया, वध करने आया, सब किया, फिर भी इसका केस नहीं काटना चाहिए। यह श्री बलराम जी रुक्मिणी को सांत्वना देने के लिए कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए दो बच्चे दुखी हो परस्पर, एक बच्चा किसी बच्चे के व्यवहार से दुखी है और वो सोचता है कि उस बच्चे को मारा जाए तब मेरा सुख होगा, उसको पीटा जाएगा तब मैं सुखी होऊंगा, तो माँ देखती है तो एक ट्रिक करती है, वो कहती है अभी मैं इसको पीटती हूँ, और उस बच्चे की आंख बचा करके ऐसे करती है, तो वो जानता है कि उसको पीटा गया, तो हंसने लगता है, दंड हो गया। तो इस तरह से श्री बलराम जी रुक्मिणी को प्रसन्न करना चाहते हैं। यह बहुत दुखी थी बेचारी उस विवाह के अवसर पर, अभी तो खैर विवाह बाद में द्वारका पहुंच करके होगा धूमधाम से, जिसका वर्णन कल आएगा विवाह का, अभी तो बलराम जी समझाएंगे रुक्मिणी को, इस तरह सांत्वना दे रहे हैं। यह नहीं समझना चाहिए कि श्री बलराम जी वास्तव में कृष्ण पर आक्षेप कर रहे हैं, यह सोचना तो अनर्थ का कारण हो जाएगा। भगवान इस तरह आक्षेप के विषय नहीं हो सकते, और श्री बलराम जी कभी कृष्ण की आलोचना नहीं कर सकते, परंतु दूसरे को समझाना है तो धर्म की बात कह करके समझा रहे हैं, और जो भी कह रहे हैं उचित कह रहे हैं। बंधु बधार है दोषों की, बध के योग्य पाप करे फिर भी न बंधुर बध मरे, बंधु के द्वारा उसका वध नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्याज्य से नहीं वह दोष हतः की मान्यते पुनः, अपने दोषों से ही वह त्याज्य है, और त्याग देना यही उसका वध है, और क्या वध किया जाए। यह कृष्ण से कह करके फिर रुक्मिणी जी से कहते हैं, देवी क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मित भ्रातापि भ्रातरम हन्य जिन घोर तरस्तप। रुक्मिणी जी से भगवान बलराम जी कहते हैं, देखो रुक्मिणी, क्षत्रियों का धर्म बहुत कठोर है और इसे प्रजापति ने बनाया है घोर तरह, जेना जिस धर्म के कारण एक भाई भी अपने भाई का वध कर देता है। तो श्री कृष्ण ने जो ये यहां किया है, इनके प्रकारांतर से कहने का मतलब धर्म पालन किया है। तो श्री कृष्ण जो किया वो धर्म का पालन किया है, और यह धर्म है किसी मनुष्य का गढ़ा हुआ नहीं है, प्रजापति विनिर्मित, क्षत्रियों का, ब्राह्मण का, वैश्य का, शूद्र का, सन्यासी का, गृहस्थ का, वानप्रस्थी का, या ब्रह्मचारी का, जो भी धर्म है, कर्तव्य है, यह प्रजापति ने बनाया। यहाँ प्रजापति से तत्पर्य है भगवान, लेकिन वहां मनुष्य भाव से बोल रहे हैं, रुक्मिणी को समझाना है। तो ये कैसे कहे कि मैं भगवान हूँ, कृष्ण ही भगवान है, ये कहने से शोभा बिगड़ती और हम लोग गलती कर ही नहीं सकते, भगवान क्या गलती करेंगे। लेकिन वे ऐसे नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ईश्वर ने बनाया है क्षत्रियों के धर्म को, प्रजापति विनिर्मित क्षत्रियाणाम अयम धर्म। अयम धर्म यह जो देख रहे हो कुरूप करना, या अभी अभी युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए, खून खराबी हुई, यह धर्म क्षत्रियों का है और इसका विधान ईश्वर ने किया है। और यहाँ तक इस धर्म से प्रभावित होकर के भाई भाई का वध कर देता है, इसीलिए क्षत्रिय धर्म जो है घोर तरह, ततःकार तस्मात, इस कारण से क्षत्रियों का जो धर्म है वो बहुत कठोर है। तो भगवान बलराम जी कहने का आशय था, रुक्मिणी, यह केवल कृष्ण ने कठोरता किया है ऐसी बात नहीं है, ये क्षत्रियों का धर्म ही है, अतः कृष्ण ने अपने धर्म का पालन किया है, स्वभाव का अनुवर्तन किया है, अतः यह दोष के योग्य नहीं। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में रहना चाहिए। तो विधाता ने ऐसा धर्म क्षत्रियों का बना ही दिया है, अरे भाई भी भाई का वध कर देता है, ये तो साला है, और उस पर भी इसका केवल केस काटा गया है, तो इसका तो कुछ भी नहीं हुआ एक प्रकार से देखा जाए तो। भ्रातापि भ्रातरम हन्यत, भ्राता भी भाई भ्राता का वध कर देता है इस धर्म के कारण, तो साला का केस मुड़ देना ये कौन भारी अपराध हो गया। ये क्षत्रिय का धर्म बहुत कठोर है, तो जो कुछ हुआ है वह एक नियम के अनुसार हुआ है, क्षत्रियों के धर्म के अनुसार हुआ है, क्षत्रियों के धर्म का निर्माण ईश्वर ने किया है। तो बलराम जी कहने का आशय था कि यह ईश्वर की इच्छा से हुआ है, यही धर्म है क्षत्रियों का, क्या किया जाए, इसलिए तुम चिंता मत करो। अतः को अस्माकम अपराध है इति भाव, हम लोगों का इसमें क्या अपराध है, यही जब धर्म ही बना है तो क्या किया जाए। भगवान भी गीता में कहते हैं कि सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्ध मित्रसन, हे अर्जुन, बहुत भाग्यशाली क्षत्रिय ऐसा युद्ध पाते, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्प तुम्हारे, तुम अपने स्वधर्म को भी देखो तो तुमको युद्ध से नहीं हटना चाहिए, यह युद्ध करना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा श्रेय देगा, अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा, दोनों तरफ से युद्ध ही सबसे अच्छा है क्षत्रिय के लिए। तो भगवान यहाँ पर फिर उसी की व्याख्या कर रहे हैं कि यही क्षत्रियों का धर्म है, कितना कठोर धर्म है कि व्यक्ति अपने गुरु तक का वध करता है। अर्जुन ने अपने गुरु तक का वध किया, डायरेक्ट नहीं किए, लेकिन गुरु शब्द तो पितामह को भी कहा जाएगा, भीष्म का वध तो उन्होंने किया था, और कितने कितने अपने संबंधियों का वध किया था, युधिष्ठिर ने, भीमसेन ने, अर्जुन ने, सब ने, लेकिन यह धर्म था और डायरेक्ट ईश्वर कमांड कर रहा था कि यह करना धर्म है धर्म है। जबकि उसको महान अधर्म मान करके अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहते थे, नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता, हम लोग महान पाप करने का निश्चय किए। भगवान कहते नहीं, सबसे बड़ा धर्म करने का निश्चित किए और यही करना पड़ेगा। अर्जुन ने वही किया, यह क्षत्रियों का धर्म है ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ। अतः इस विषय में तुम्हें दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए कि यह क्यों हो गया यह क्यों हो गया। अब बताइए, केस काटने पर तो इतना दुख हो रहा है उसको, और भगवान मस्तक काट दिए होते तब क्या कर, कितना उसे पीड़ा होती। तो रुक्मिणी से समझा करके फिर कृष्ण से कह रहे हैं, राजस्य भूमेर वित्तस्य स्त्रियो मानस्य तेजसः मानिनो अन्यस्य वाहे तो श्रीमदान्धा क्षिपन्ति। जो रुक्मिणी गाली दे रहा था भगवान को, रुक्मिणी गाली दे रहा था बारंबार पहले और बाद में कृष्ण का वध करना चाहता था, तो उस विषय में भगवान श्री बलराम जी श्री कृष्ण से कह रहे हैं, कृष्ण राज्य हेतु हो, राजस्य हेतु, राज्य के कारण, भूमि के कारण, धन के कारण, स्त्री के कारण, मान के कारण, तेज के कारण, अथवा अन्य स्वा हेतु, अन्य कारण से भी जो मानी लोग होते हैं, देहाभिमानी लोग और श्रीमद से अंधे होते हैं, वे छिपनते ही, वे एक दूसरे पर आक्षेप करते ही हैं, गाली देते ही हैं, दुर्वचन बोलते ही हैं। अतः रुक्मी ने तुम्हारे प्रति जो दुर्वचन बोला, उसने जो तुमको गाली दिया, तुमको तुम्हारा वध करना चाहा, तो यह सब स्वाभाविक ही है, कोई ये कोई बहुत अटपटांग काम नहीं किया है वो रुक्मी, ये तो ऐसा होता ही है। राजस्य हेतु, सब में हेतु लगाना पड़ेगा, राजस्य हेतु, भूमे हेतु, वित्तस्य हेतु, स्त्रीय हेतु, मानस हेतु, तेजस हेतु। यदि किसी मानी व्यक्ति का, जिसका समाज में सम्मान है और जो यह मानता है कि मैं धनी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ऊंचे कुल का हूँ, मैं राजा हूँ इत्यादि, तो ऐसे मानी व्यक्ति का मान जहाँ खंडित होता है तो वह दूसरों पर आक्षेप करता ही है, और उसके तेज में बाधा पड़ती है तो वो गाली देता है, बाधा देना चाहता है, और राज्य के कारण, राज्य के कारण मतलब ऊंचा पद लेने के कारण। हम लोग देखते हैं जब इलेक्शन का समय आता है चुनाव जीतने का, तो सांसद या विधायक लोग जो प्रवचन करते हैं, तो उसमें एक पार्टी में कोई खड़ा है तो दूसरे पार्टी को गाली देने में ही भाषण की सफलता समझता है, उसने यह नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ये किया, उसने ये किया, अब उसको हटाइए, हमको एक चांस दीजिए, यही कहते हैं। वास्तव में हमने तो जहां तक देखा है, अखबार में छपा हुआ या कभी डायरेक्ट सुना हुआ, 75% केवल विपक्ष की आलोचना करते हैं, 25% में वे लोग कहते होंगे कि ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये केवल 25%, और 75% केवल दूसरे को गाली देते हैं, यही कहते हैं। और राजस्व है तो उसमें कारण और नहीं है, जनता का प्रेम नहीं है, हमको गद्दी मिले इसके लिए, राज्य के कारण वे छिपनती ही आक्षेप करते ही गाली देते रहते हैं, और केवल वोट के समय ही नहीं, सालों भर गाली देते रहते हैं। एक पार्टी दूसरे की प्रशंसा में तो शायद एक शब्द भी नहीं निकालते होंगे कि बेचारे ने कुछ किया है, कुछ नहीं, ऐसा विपक्ष को गाली देना ही है, आलोचना करना ही है। उसी को श्री बलराम जी कह रहे हैं कि ये मानी लोग, श्री मदांध लोग, राज्य के कारण अपने विपक्ष पर आक्षेप करते ही हैं, जो भी राज्य में बाधा दिया बस उसको मारो, उसकी गाली दो, उसकी आलोचना करो, उसको छोटा कहो, इस तरह से करते हैं। राज्य से है तो, भूमि है तो, भूमि के कारण झगड़ा होता ही रहता है, आक्षेप होता रहता है। और विकस्य है तो धन के लिए, धन धन कारण है, धन के लिए झगड़ा हो रहा है, लेकिन गाली ऐसे ऐसे देंगे कि उसमें ये नहीं कहेंगे धन कारण, और दूसरा दूसरा दोष उभारेंगे ऐसा वैसा, और स्त्री के कारण, मान के कारण, तेज कारण, तो ये करते ही रहते हैं। अतः यदि रुक्मी मान लो तुमको गाली देता हुआ आ रहा था, झगड़ा करता हुआ आ रहा था, फिर भी तुमको इसका केस नहीं करना चाहिए था, ये कहने का, ये तो होता ही रहता है, दुनिया में चलता रहता है, ऐसा होता है। भगवान ने ये कहा श्री बलराम जी ने कि तो होता रहता है, आक्षेप होता है, तथापि अस्माकम एतद अनुचितम इति भाव, हम लोगों के द्वारा जो ये काम हुआ है वो अनुचित हुआ है, और रुक्मी के द्वारा जो कुछ भी हुआ है वो उचित हुआ है, क्या किया जाएगा, उसके स्वभाव के अनुसार सब उचित हुआ है, लेकिन हम लोगों के अनुसार इस तरह केस दाढ़ी मुछ काटना उचित नहीं है, किसी को अपमानित करना उचित नहीं। प्रणादपि सुनी सुनता अमानिना मान देना कीर्तनी सदा हरि, ये तो वैष्णव का आचार सदाचार है, भक्तों के लिए है। तो श्री बलराम जी वही समझा रहे हैं भगवान को कि फिर भी हम लोगों के द्वारा अनुचित हुआ है। अब अंत में आ गए तत्व ज्ञान देना चालू किए रुक्मिणी जी को, तवेयम विषमा बुद्धि सर्वभूतेषु दुर्हृदाम जन्मन्य से सदा भद्रम सुहृदाम भद्रम अज्ञवत। अब डायरेक्ट इतना समझाने के बाद भी, कृष्ण को डांटने के बाद भी, रुक्मिणी जी अभी ससक रही थी, रो रही थी भाई को विरूप देखकर। तब श्री बलराम जी कहते हैं, तब इयम बुद्धि विषमा, ये तुम्हारी जो बुद्धि है ये बिल्कुल गलत, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। विषमा का अर्थ असमीचीन है, उचित बुद्धि नहीं है। अब डायरेक्ट समझाने लगे, यम तव बुद्धि विषमा, यह विषम है, क्यों, सर्वभूतेषु दुर्हृदाम जन्मन्य से सदा भद्रम सुहृदाम भद्रम अज्ञवत्। सर्वभूतेषु इतने जीव हैं, इन जीवों में जो दुर्हृद हैं, जो अहित हैं अपने, उसमें भगवान बलराम जी के कहने का मुख्य अर्थ रुक्मी है, इतने प्राणी हैं दुनिया में भरे पड़े, इतने मनुष्य हैं, तुम्हारे विवाह को कौन रोका था, कौन रोका था, यही रोका था ना, और किसी को, और सब लोग मनोरथ कर रहे थे, कुंडिनपुर के जितने लोग कृष्ण को देखे वे लोग कह रहे थे कि हे भगवान, हमने जो भी पुण्य किया हो उस पुण्य के प्रभाव से वैदर्भी का पाणी ग्रहण अच्युत कर, सब ये कह रहे थे, लेकिन यह रोका था। और इसी के प्रति तुम्हारा ऐसा सौहार्द है, और यही तुम्हारे सौभाग्य को नष्ट करना चाहता था, कृष्ण का वध करना चाहता था, यह जो तुम्हारी बुद्धि है कि जो तुम्हारा अहित करने वाला है, और उसको अगर थोड़ा सा दंड दिया जा रहा है, केवल केस काटा जा रहा है, तो तुम इतना बड़ा ले रही हो इस बात को, तो तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, गलत बुद्धि है। किसी व्यक्ति को यह कह देना कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, बहुत बड़ी आलोचना है, लेकिन भगवान उस समय सोच रहे थे कि ये कहना जरूरी है, कठोर बात समय पर बोलना चाहिए यदि वो हित करने वाली है तो। सर्वभूतेषु दुर्हृदाम, सर्वभूतेषु दुर्हृदाम अहिता नाम, दुर्हृद का अर्थ होता है खराब हृदय वाला, और सुहृद का अर्थ होता है सुष्ठु सुंदर हृदय वाला, अनुकूल, हित कहेंगे एक को और दूसरे को अहित। तो अहिता नाम भ्रातृ नाम अज्ञवत जब भद्रम मन से इच्छसी इयम तो विषमा असमीचीना बुद्धि, तुम रुक्मी जैसे अपना अहित करने वाले व्यक्ति का भी भद्रम मन से इच्छसी, जो तुम उसके कल्याण की कामना कर रही हो यह तुम्हारी विषम बुद्धि है, यह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जतः तदेवम सुहृदम अभद्रम इति श्लोक बता रहा है, सुहृदम भद्रम अज्ञवत सुहृदम अभद्रम। यदि तुम रुक्मी का भद्र चाहती हो, कल्याण चाहती हो, उसका हित चाहती हो, यह ठीक नहीं है। क्योंकि रुक्मी का हित करना, रुक्मी का के लिए अच्छा करना, यही सुहृदों के लिए बुरा होगा। रुक्मी के लिए अच्छा काम किया जाए उसको निश्चित ही जो सच्चे सुहृद है, अपने हित है, उनके लिए वो विपरीत होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इस कारण से बलराम जी कह रहे हैं कि यह ठीक हुआ है। तुम जो सोच रहे इतना बड़ा दाढ़ी मुझ काट दिया गया तो इस पर इतना रो रही हो, यह ठीक नहीं है, यह दुर्हृद है, यह अहित है। अगर तो इसका नहीं दाढ़ी मुझ काटा जाता, इसका वपन नहीं किया जाता, तो इससे सुहृदों का अपमान हो रहा था। अथवा सर्वभूतेषु दुर्हृदमपि स्वसुहृदं भद्रम एव दण्ड रूपं मुण्डनम् अभद्रम जनमन्यसे तवेयं विषमा बुद्धिरिति। अथवा श्री बलराम जी यह कह रहे हैं कि समस्त जीवों में जो दुर्हृद हैं परंतु हैं वास्तव में सुहृद, जैसे ये रुक्मी है दुर्हृद परंतु संबंध की दृष्टि से सुहृद है, भाई है, तो इसको जो दंड दिया गया थोड़ा सा दंड रूप मुंडनम, इसको तुम अभद्रम जनमन्य से, इसको तुम गलत मान रही हो, इस विषय में इस मान्यता को मानने वाली तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं। अगर सुहृद भी मानती हो कि भाई है तो इसके सुधार के लिए दंड दिया गया है ना, तो इसको सुधारने के लिए अगर दंड दिया गया है तो इसको तुम अभद्रम मानने से, इसको तुम खराब मान रही हो, तो मैं तो मान रहा हूं कि तुम्हारी बुद्धि ही खराब है। ऐसे तुमको नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इनको दंड दिया गया है तो ठीक किया गया है, अब आयुष्य तो शांत हो जाएंगे, और हो ही गए। उसके बाद रुक्मी ठीक हो गया, बाद में रुक्मिणी जी ने समझाया था भेंट होने पर कि आपको भगवान से इस तरह विरोध नहीं करना चाहिए, तब उसने अपने पुत्री का विवाह भगवान के पौत्र से करने का निर्णय किया, संबंध स्थापित करने के, परंतु उस विवाह में ही बलराम जी ने मार दिया। आज जो समझा रहे हैं अथवा सर्वभूतेषु मध्ये दुर्हृदां शिशुपालादीनां अभद्रम सुहृदं भद्रम च जन्मन्य सत्तव्यम विषमा बुद्धि समान न भवत अज्ञवत अज्ञानमेव। अथवा लास्ट अर्थ ये कर रहे हैं सुहृद स्वामी कि सभी जीवों में जो दुर्हृद हैं, जैसे शिशुपाल आदि अहित करने वाले हैं, उनका अभद्र होना चाहिए और सुहृद रुक्मी आदि का भद्र होना चाहिए, यह जो तुम सोच रही हो तुम्हारी विषम बुद्धि है, ये ठीक बुद्धि नहीं। अरे सोचना है तो किसी का अभद्र न सोचा जाए, सबका भद्र सोचना चाहिए। तो शिशुपाल आदि मारे गए, उनकी सेना के कई जवान मारे गए, तब तुम नहीं रो रही थी, और भाई का केस काट दिया गया तो हाहाकार कर रही हो, ये तो बुद्धि ठीक नहीं है। किसी भी तरह से तुमको रोना नहीं चाहिए, जो कुछ हुआ है सब ठीक हुआ है। और इसके बाद श्री बलराम जी जो ज्ञान देना चालू किए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है श्रीमद् भागवतम का। तो मैं तो बहुत बार इस कथा को कहा हूँ और पूरे सिटिंग में इसको लेता हूँ तब ये क्लियर होता है। एक एव परोह्यात्मा एक आत्मोह आत्मोहो निडामे स कल्पते देव माया सुहृद दुर्हृद उदासी न इति देहात्मानिना। यदि मान लीजिए रुक्मिणी जी कहें कि कैसे